नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। राष्ट्रपति भवन में अमृत उद्यान आज से जनता के लिए खोल दिया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति संपदा में प्लूमेरिया गार्डन, बनियान ग्रोव और बबलिंग ब्रुक का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में लगभग 11,000 करोड़ रुपए की दो राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। दिल्ली को कूड़े से आजादी अभियान के तहत दिल्ली नगर निगम ने अब तक 10,000 किलोग्राम से अधिक कचरा एकत्र किया है। दिल्ली पुलिस ने प्रतिबंधित चीनी मांझा बेचने में शामिल 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर चीनी मांझे के 68 रोल बरामद किए। और जन्माष्टमी का त्यौहार आज दिल्ली सहित पूरे देश में धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्लीवासियों को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति भवन में अमृत उद्यान आज से जनता के लिए खोल दिया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति संपदा में प्लूमेरिया गार्डन, बनियान ग्रोव और बबलिंग ब्रुक का उद्घाटन किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्लूमेरिया गार्डन में घास के टीले और विशेष रूप से तैयार किए गए वृक्षारोपण शामिल हैं।
अमृत उद्यान में इस वर्ष कई नए आकर्षण मौजूद है। बरगद ग्रोव में रिफ्लेक्सोलॉजी पथ, पंचतत्व पथ और जंगल जैसे ध्वनि परिदृश्य तैयार किए गए हैं। वहीं बैबलिंग ब्रुक में झरनों, मूर्तिकला की टोटियों, सीढ़ीनुमा पत्थरों और एक कुंड को शामिल किया गया है, जिससे यह बेहद आकर्षक और शांत वातावरण प्रदान करती है। उद्यान पथ में बाल वाटिका, हर्बल गार्डन, बोनसाई गार्डन, सेंट्रल लॉन, लॉन्ग गार्डन और सर्कुलर गार्डन शामिल है। इससे पहले गुरुवार को राष्ट्रपति मुर्मू ने अमृत उद्यान ग्रीष्मकालीन वार्षिक संस्करण 2025 का उद्घाटन किया था। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य में खिलाड़ियों को और 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षकों को विशेष प्रवेश मिलेगा। अमृत उद्यान में प्रवेश के लिए पंजीकरण अनिवार्य तथा निःशुल्क है। आगंतुक राष्ट्रपति भवन की वेबसाइट visit.rashtrapatibhavan.gov.in पर ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं या राष्ट्रपति भवन के गेट नंबर 35 के बाहर बने स्वयं सेवा कियोस्क से सीधे टिकट ले सकते हैं। अमृत उद्यान 14 सितंबर तक सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक जनता के लिए खुला रहेगा। प्रवेश नॉर्थ एवेन्यू रोड के निकट गेट नंबर 35 से होगा। उद्यान रखरखाव के लिए हर सोमवार को बंद रहेगा। प्रादेशिक समाचार के लिए आदर्श।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में लगभग 11,000 करोड़ रुपए की दो बड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। इन परियोजनाओं में द्वारका एक्सप्रेसवे के दिल्ली खंड और शहरी विस्तार सड़क का दूसरा भाग शामिल है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा कि ये परियोजनाएं राजधानी दिल्ली के लोगों को यातायात में सुविधा देने के सरकार के दृष्टिकोण के अनुरूप विकसित की गई हैं। इन परियोजनाओं से यातायात सुगम होगा, समय की बचत होगी और दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में ट्रैफिक जाम की समस्या से राहत मिलेगी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के शुभारंभ के कारण राजधानी में यातायात प्रभावित रहेगा। दिल्ली पुलिस के यातायात विभाग के अनुसार टिकरी बॉर्डर, पीरागढ़ी और रोहिणी क्षेत्रों में यातायात प्रतिबंध और मार्ग परिवर्तन लागू रहेंगे। इसके अतिरिक्त भगवान महावीर रोड, बवाना रोड, कंझावल रोड, कंझावला लिंक रोड और बादशाह दहिया मार्ग सहित अन्य मार्ग भी प्रभावित रहेंगे। ये प्रतिबंध कल सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक लागू रहेगा। यातायात विभाग ने स्थानीय निवासियों और यात्रियों को इन मार्गों से बचने की सलाह दी है। राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 7वीं पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। वर्ष 2018 में 16 अगस्त को उनका निधन हुआ था। श्री वाजपेयी 3 बार देश के प्रधानमंत्री बने। वर्ष 2015 में उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से अलंकृत किया गया। राजधानी के प्रमुख नेताओं और पदाधिकारियों ने पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। एक रिपोर्ट।
उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि श्री वाजपेयी राष्ट्र के गौरव थे, जिनका पूरा जीवन देश को समर्पित रहा। वहीं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने श्री वाजपेयी के स्मारक सदैव अटल पर पुष्पांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि अटल जी की सुशासन केंद्रित नीतियों और विचारों ने देश के विकास को नया आयाम देने के साथ ही वैश्विक मंच पर भारत की प्रभावशाली उपस्थिति भी दर्ज कराई। मुख्यमंत्री ने कहा कि अटल जी का आदर्श जीवन सभी को समाज और राष्ट्र सेवा करने हेतु युगो युगो तक प्रेरित करता रहेगा। श्री विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय राजनीति के शिखर पुरुष थे, जिनका व्यक्तित्व भारतीय राजनीति में आदर्श, मर्यादा, उदारता और राष्ट्र निष्ठा का प्रतीक रहा। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि उनकी वाणी, विचारधारा और कर्मनिष्ठा सभी कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। आदर्श की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए सरफिरोज।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsoneair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। राजधानी दिल्ली में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पावन पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मान्यताओं के अनुसार द्वापर युग में आज के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। इस दिन भक्त व्रत रखते हैं, बाल गोपाल का श्रृंगार करते हैं और उन्हें माखन, मिश्री, तुलसी पत्ते जैसी प्रिय वस्तुएं अर्पित करते हैं। इस दौरान भक्तजन पूजा पाठ और भजन कीर्तन में लीन रहे। कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर शहर के स्कूलों में भगवान कृष्ण और राधा की वेशभूषा में बच्चों ने उत्सव में भाग लिया। मंदिरों और घरों के अलावा बाजारों में भी रौनक देखने को मिल रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस दौरान लड्डू गोपाल के लिए वस्त्र, आभूषण, मिठाइयों और फल फूलों की बिक्री सबसे अधिक देखने को मिल रही है।
श्री कृष्ण जन्माष्टमी के भव्य उत्सव को मनाने के लिए बड़ी संख्या में भक्त शहर के विभिन्न मंदिरों में एकत्रित हो रहे हैं। इनमें नई दिल्ली के बिड़ला मंदिर, ईस्ट ऑफ कैलाश स्थित एस्कॉन मंदिर, पंजाबी बाग के कृष्ण मंदिर, द्वारका स्थित एस्कॉन द्वारकाधीश मंदिर और दक्षिणी दिल्ली के छतरपुर मंदिर में भव्य उत्सव मनाया जा रहा है। इस अवसर पर भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाने के लिए पंजाबी बाग के कृष्ण मंदिर में 501 व्यंजन तैयार किए जा रहे हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी आज ईस्ट ऑफ कैलाश के एस्कॉन मंदिर में भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना और आरती की। मीडिया को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री गुप्ता ने नागरिकों को अपनी शुभकामनाएं दी और कहा कि भगवान कृष्ण का आशीर्वाद सदैव लोगों पर बना रहे।
आज का ये दिन पूरे देश के लिए शुभ हो, हर हिंदू धर्म प्रेमी के लिए शुभ हो। उनका आशीर्वाद, प्रभु कृष्ण का आशीर्वाद हम सब पे यूं ही बना रहे। देश में उत्सव का माहौल है और ये उत्सव सब लोग मिल करके मनाएं, प्रभु के आगमन की तैयारी करें।
जन्माष्टमी मात्र एक पर्व नहीं बल्कि ये अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक है। ये प्रेम, भक्ति और त्याग के अलावा लोगों को सत्य और धर्म के मार्ग पर चलकर जीवन में सफलता प्राप्त करने का संदेश देता है। आदर्श की रिपोर्ट के साथ शिवांग, प्रादेशिक समाचार।
जन्माष्टमी के पावन अवसर पर उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी दिल्ली वासियों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी। एक रिपोर्ट।
उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने कामना की कि भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से सभी के जीवन में भक्ति, प्रेम और उल्लास के साथ सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि का संचार हो। वहीं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आशा जताई कि मुरली मनोहर श्री कृष्ण का आशीर्वाद जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और सौहार्द का संचार करे। उन्होंने शहरवासियों से कर्म, प्रेम और करुणा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेने की अपील की। नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने इस अवसर पर प्रार्थना की कि भगवान कृष्ण सभी का कल्याण और दुख का नाश करें। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि धर्म की स्थापना और अधर्म, अन्याय तथा अत्याचार को समाप्त करने वाले संपूर्ण जगत के पालनहार यशोदा नंदन कन्हैया सबका कल्याण करें। वहीं दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने आशा जताई कि भगवान श्री कृष्ण की कृपा सभी पर सदैव बनी रहे। आदर्श की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए करिश्मा राय।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज बताया कि दिल्ली सरकार यमुना की अविरल और निर्मल प्रवाह को बहाल करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म और मान्यताओं में यमुना का महत्व अधिक है और ये लोगों की आस्था से जुड़ी हुई है। उन्होंने सभी दिल्लीवासियों और श्रद्धालुओं से एक स्वच्छ और अविरल यमुना के सपने को साकार करने के लिए जन भागीदारी के लिए आग्रह किया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज वरिष्ठ अधिकारियों और पार्टी नेताओं के साथ शहरी विस्तार सड़क परियोजना UER2 के उद्घाटन स्थल का निरीक्षण किया और जरूरी निर्देश जारी किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इसके शुरू होने से दिल्ली को जाम मुक्त बनाने और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में संयोजकता बेहतर करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि ये कॉरिडोर प्रदूषण कम करने और पर्यावरण को बेहतर बनाने में भी योगदान देगा। UER2 की अन्य विशेषताओं पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ये दिल्ली के बुनियादी ढांचे के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा, जो न केवल यातायात को सुगम बनाएगी बल्कि दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के निवासियों के जीवन स्तर को भी बेहतर बनाएगी। श्रीमती गुप्ता ने इस परियोजना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी देश की राजधानी को विकसित दिल्ली बनाने में पूर्ण गंभीरता से सहयोग कर रहे हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली को कूड़े से आजादी अभियान के तहत दिल्ली नगर निगम ने अब तक शहर से 10,000 किलोग्राम से अधिक कचरा एकत्र किया है। नगर निगम ने बताया है कि इस अभियान के तहत 1 से 14 अगस्त तक उन्होंने स्वच्छता और कचरा प्रबंधन में उल्लेखनीय प्रगति हासिल की। एक रिपोर्ट।
नगर निगम ने व्यापक कचरा संग्रहण और प्रबंधन के लिए प्रतिदिन औसतन 12,000 मीट्रिक टन ठोस अपशिष्ट और रेलवे पटरियों के आसपास से करीब 690 मीट्रिक टन ठोस अपशिष्ट उठाया है। वहीं शहर के सौंदर्यीकरण हेतु 35,000 से अधिक पोस्टर और बैनर सार्वजनिक स्थलों से हटाए गए हैं तथा 160 दीवारों का सौंदर्यीकरण किया गया है। हरित आवरण और वृक्षारोपण पहल के अंतर्गत MCD ने 6 से 8 अगस्त तक लगभग 30,000 वृक्षारोपण अभियान चलाए, जिससे दिल्ली के हरित आवरण को सुदृढ़ किया गया। इसके अतिरिक्त जन जागरूकता और लोगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए 419 जन जागरूकता अभियानों का आयोजन किया गया और करीब 2,61,000 नागरिकों को स्वच्छता शपथ दिलाई गई। MCD ने रेखांकित किया है कि ये अभियान दिल्ली को एक स्वच्छ, हरा भरा और स्वस्थ शहर बनाने की उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने बताया कि इस दौरान व्यापक स्वच्छता अभियानों, बड़े पैमाने पर जन सहभागिता तथा लक्षित कचरा प्रबंधन रणनीतियों को सफलतापूर्वक लागू किया गया। आदर्श की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए मैं हिमांशु कांडपाल।
दिल्ली पुलिस ने शहर में प्रतिबंधित चीनी मांझा बेचने में शामिल 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर चीनी मांझे के 68 रोल बरामद किए। खुफिया जानकारी मिलने पर पुलिस की अपराध शाखा ने न्यू सीलमपुर और संगम विहार स्थित दुकानों से मांझे के रोल जब्त किए। पुलिस ने बताया है कि ये कार्रवाई पतंगबाजी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए की गई है, जो नागरिकों की सुरक्षा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता दर्शाती है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS की यात्रा करने वाले पहले भारतीय ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला कक्षीय प्रयोगशाला के 18 दिन के सफल मिशन के बाद भारत वापसी कर रहे हैं। वे सफल अंतरिक्ष मिशन के बाद अमरीका में पुनर्वास में थे। उनकी कल भारत पहुंचने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पारसी नववर्ष के शुभारंभ पर देशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि देश को पारसियों के निरंतर योगदान पर गर्व है। श्री मोदी ने यह भी आशा व्यक्त की कि ये वर्ष सभी के लिए सुख, समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य लेकर आए। राजधानी दिल्ली के कई क्षेत्रों में आज दिनभर हल्की से मध्यम वर्षा हुई और बादल छाए रहे। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान सामान्य से 0.7 डिग्री अधिक 34.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.5 डिग्री कम 25 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान बादल छाए रहने और हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। कल का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति भवन में अमृत उद्यान आज से जनता के लिए खोल दिया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति संपदा में प्लूमेरिया गार्डन, बनियान ग्रोव और बबलिंग ब्रुक का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में लगभग 11,000 करोड़ रुपए की 2 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। दिल्ली को कूड़े से आजादी अभियान के तहत दिल्ली नगर निगम ने अब तक 10,000 किलोग्राम से अधिक कचरा एकत्र किया। दिल्ली पुलिस ने प्रतिबंधित चीनी मांझा बेचने में शामिल 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर चीनी मांझे के 68 रोल बरामद किए। और जन्माष्टमी का त्यौहार आज दिल्ली सहित पूरे देश में धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली वासियों को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।